हिडन फाइल्स साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। हिडन फाइल्स सुन रहे हैं आप। देखिए, वो वक्त गया जब क्रिमिनल्स घर वालों को किडनैप करके फिरौती लेते थे। ये साइबर एज है एंड यहाँ पर आपके डेटा को किडनैप करके फिरौती मांगी जाती है। इस साइबर क्राइम को कहते हैं रैंसमवेयर। सुनिए आज के रियल लाइफ के साइबर क्राइम केस में एक बिजनेस ओनर कैसे बने इसके शिकार।
रघुवीर जी एक बिजनेसमैन है और उनकी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। एक दिन मुझे रघुवीर जी का फोन आया। वो काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा,
अमित जी, मेरी कंपनी में रैंसमवेयर अटैक हुआ है, कैन यू प्लीज हेल्प।
मैंने पूछा, कौन सा रैंसमवेयर है? रघुवीर जी ने कहा,
मैं इतना टेक्निकल हूं नहीं, मेरी टीम ने कहा है कि रैंसमवेयर अटैक है।
मैंने कहा कि आपकी सर्वर स्क्रीन पर कोई नोट लिख के आ रहा होगा, उसकी फोटो खींच के भेजिए। रघुवीर जी ने जब अपने सर्वर स्क्रीन की फोटो खींच के भेजी तो उसमें लिखा था साइट इनक्रिप्टेड और रिकवरी के लिए 0.2 बिटकॉइन मांगे गए थे। साथ में एक बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस भी था, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये रैंसमवेयर है कौन सा। आमतौर पर क्रिमिनल्स अपने रैंसमवेयर नाम को प्रमोट करने के लिए लॉग्ड सर्वर की स्क्रीन पर जरूर मेंशन करते हैं। ये कुछ अजीब था। एक बात और यहां जो चौंकाने वाली थी वो ये कि रैंसम सिर्फ 0.2 बिटकॉइन मांगा गया था, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए थी। आमतौर पर रैंसमवेयर अटैक में डिमांड काफी बड़ी होती है। रघुवीर जी ने कहा,
आई एम रेडी टू पे रैंसम, लेकिन ये पता नहीं कि ये पे करके भी मुझको मेरा डेटा वापस मिलेगा या नहीं।
मैंने रघुवीर जी से कहा कि जल्दबाजी मत कीजिए, लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्स्ट। मैं अपनी टीम से किसी को अलाइन करता हूं, वो आपकी मदद करेगा। मेरी टीम से वरीश ने सर्वर एनालिसिस करना शुरू किया और इस बीच मैं सोच रहा था कि हैकर कम रैंसम क्यों मांग रहा है। इसके तीन ही मायने हो सकते थे, या तो क्रिमिनल अमेच्योर है, या वो इस कंपनी को अच्छी तरह जानते हैं और उनको पता है कि ये कंपनी डेटा रिकवरी के लिए इससे ज्यादा खर्चा करेगी नहीं, और या फिर ये रैंसमवेयर आसानी से डिक्रिप्ट हो सकता है। आमतौर पर क्रिमिनल्स एंड पॉइंट या सर्वर डेटा इनक्रिप्ट करते हैं। यहां पर वेबसाइट का डेटा इनक्रिप्ट हुआ था। हालांकि ये वेब एप्लीकेशन में कुछ सेंसिटिव डेटा हो सकता था, इसलिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं था। रैंसमवेयर नोट के साथ एक काउंटडाउन क्लॉक भी चल रही थी और उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 7 दिन 10 घंटे और 21 मिनट ही बचे थे। हर सेकेंड टिक टिक होती क्लॉक से रघुवीर जी की टेंशन बढ़ती जा रही थी। जब वरीश ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसने कुछ नोटिस किया। आमतौर पर जब रैंसमवेयर सर्वर फाइल्स को इनक्रिप्ट करते हैं तो उनका एक्सटेंशन बदल जाता है, डॉट लॉक और समथिंग, और फिर ये फाइल्स खुलती नहीं। वरीश ने चेक करने के लिए जैसे ही एक फाइल पर क्लिक किया वो तो खुल गई। वरीश चौंक गया क्योंकि ये फाइल इनक्रिप्टेड थी ही नहीं। वरीश ने जब मुझे बताया कि फाइल्स इनक्रिप्टेड है ही नहीं तो मेरा चौंकना भी बनता था। मैंने पूछा, तो फिर ये वार्निंग नोट कैसे आ रहा है? वरीश ने जैसे ही बिटकॉइन अकाउंट नंबर के फाइल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए क्वेरी रन की, ये लिंक हमें मिल गया। WP कंटेंट प्लगइन्स डायरेक्टरी लिस्ट base.php। ये एक फेक रैंसमवेयर लिंक था। रघुवीर जी के सिस्टम में कुछ भी इनक्रिप्टेड हुआ ही नहीं था। उनके सामने जो दिख रहा था वो एक सिंपल HTML फाइल थी जो कि एक बोगस प्लगइन के थ्रू जनरेट हुई थी। इस HTML पेज के एंड में हमें वो कोड भी मिल गया जिसकी वजह से ये मैसेज दिख रहा था। हमें एक PHP स्क्रिप्ट भी मिली जिससे कि ये काउंटडाउन क्लॉक रन हो रही थी। इसमें डेट और टाइम रिमोटली चेंज किया जा सकता था ताकि टारगेटेड कंपनी में ज्यादा पैनिक क्रिएट किया जा सके। मतलब ये सिर्फ एक भ्रम था जिससे लोगों को डराकर पैसे मांगे जा रहे थे। डिमांड भी लिमिटेड थी ताकि लोग बिना सोचे समझे कई बार शायद पेमेंट कर ही दें। ये फेक रैंसमवेयर का पहला केस हमारे सामने आया था। हमने जब इसकी जानकारी रघुवीर जी को दी तो वो भी चौंक गए। उन्होंने तो मन बना ही लिया था कि इतना अमाउंट तो वो पे कर ही देंगे। रघुवीर जी के सिस्टम्स इन्फेक्टेड तो थे, हाँ इनक्रिप्टेड नहीं थे। सो सबसे पहले हमने उनके सिस्टम से इन्फेक्शन को क्लियर करना शुरू किया और ये ध्यान रखते हुए कि हमसे कोई लॉग डेटा ना डिलीट हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। हमें यह भी जानना जरूरी था कि रघुवीर जी के सिस्टम तक ये इन्फेक्शन पहुंचा कैसे। इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए हमने वर्डप्रेस की WP कंटेंट प्लगइन्स डायरेक्टरी से वो प्लगइन रिमूव कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जब हमने उनकी वेबसाइट अप करने की कोशिश की तो वो अप नहीं हो रही थी। हर पेज को एक्सेस करने पर 404 पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा था, और इसका कारण था एक और मेलिशियस प्लगइन। यहां इस मेलिशियस प्लगइन ने एक बेसिक SQL कमांड रन किया था जो कि किसी भी पब्लिश्ड पेज को ढूंढता था और उसका स्टेटस नल कर देता था। वेबसाइट और एप्लीकेशन का सारा कंटेंट डेटाबेस में था पर वो एक्सेस नहीं हो रहा था, और इसको ठीक करने के लिए हमें बस एक और SQL कमांड रन करना था जो कि इस प्रोसेस को रिवर्स कर दे। मेलिशियस प्लगइन को रिमूव करने के बाद हमारा अगला टास्क था टर्मिनल तक पहुंचना, उसकी डिजिटल आइडेंटिटीज ढूंढना, और इसके लिए हमने सर्वर के एक्सेस लॉग को स्टडी करना शुरू किया। जब भी आप कोई सर्वर या वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वहां एक्सेस करने वाले का पता रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि आपका IP एड्रेस लिख लिया जाता है, और इस रिकॉर्ड्स को एक्सेस लॉग बोलते हैं। जब हमने एक्सेस लॉग चेक किया तो हमें कुछ सस्पेक्टेड IP एड्रेसेस मिल गए। ये IP एड्रेसेस जर्मनी के थे, मतलब किसी ने जर्मनी के सर्वर से रघुवीर जी का सर्वर एक्सेस किया था, और ये वर्डप्रेस का प्लगइन एडिटर फीचर यूज करके वो WP एडमिन के थ्रू मेलिशियस प्लगइन इंस्टॉल कर दिया था। यहां चौंका देने वाली बात ये भी थी कि अटैकर की जो पहली रिक्वेस्ट इस सर्वर पर आई थी वो एडमिन पैनल के थ्रू आई थी, मतलब कि वो जो कोई भी था उसके पास रघुवीर जी के सर्वर का एडमिन एक्सेस भी था। क्रिमिनल के पास रघुवीर जी के सर्वर का एडमिन पासवर्ड पहुंचा कैसे? मैंने वरीश से पूछा, क्या सर्वर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था? वरीश ने जो कहा उससे हम फिर सोच में पड़ गए। रघुवीर जी का सर्वर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेटेड भी था, और उसके लिए OTP सर्वर एडमिन के मोबाइल फोन में ही जाता था। बिना OTP कोई सर्वर का एक्सेस ले नहीं सकता। हमने रघुवीर जी के सिस्टम एडमिन पारितोष से बात की और देखा कि जब अटैकर ने फर्स्ट टाइम एडमिन पैनल लॉगिन किया था तो क्या पारितोष के मोबाइल पर कोई OTP आया था, और बेसिक जांच में ही यह साफ हो गया कि OTP तो आए थे। पारितोष का कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि सर्वर किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण उसे कई सारे OTPs भेजता रहता है, पर उस वक्त कोई लॉगिन एक्सेस नहीं होता, इसलिए उसने वो OTP शायद इग्नोर कर दिए। पर सवाल यह था कि बिना OTP एडमिन लॉगिन हुआ कैसे? रघुवीर जी का सर्वर रिकवर हो गया था, और हमारे एंड से भी इस केस की जांच अब स्लो ही थी कि 2 दिन बाद रघुवीर जी का फिर से फोन आया, और वो काफी डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिमिनल ने कुछ फोटोज ईमेल किए हैं। उन्होंने वो फोटोज मुझे भेज दी। टोटल 4 पिक्चर्स थी। पिक्चर रघुवीर जी के ऑफिस की थी और उनके केबिन की थी। मैंने जब पिक्चर्स देखी तो मुझे लगा ये तो रैंडम पिक्चर्स हैं। ऐसा लगा जैसे किसी मोबाइल से खींची गई हो और मोबाइल सरफेस पर हो या टिल्टेड रखा हो। रघुवीर जी ने कन्फर्म किया कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि ये पिक्चर्स कोई कैसे ले सकता है, क्योंकि उनके आसपास कोई भी नहीं था। वो केबिन बंद करके अकेले बैठते हैं, ये संभव ही नहीं है, जरूर कोई हिडन कैमरा है। मैंने अपनी टीम से विशाल को RF स्कैनर के साथ रघुवीर जी के ऑफिस भेजा, और हमने उनका पूरा ऑफिस RF स्कैनर से भी चेक किया, पर कोई हिडन कैमरा या सर्वेलेंस डिवाइस नहीं मिली। एक फेक रैंसमवेयर से शुरू हुआ यह केस अब पर्सनल सर्वेलेंस पर पहुंच गया था, मतलब क्रिमिनल हमारे आसपास ही था और वो हमें लगातार चैलेंज कर रहा था। सवाल यह था कि अगर कोई सर्वेलेंस डिवाइस नहीं थी तो रघुवीर जी के चैंबर्स में फोटोज कैसे खींची गई। अभी हम इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि रघुवीर जी का फिर से फोन आया, और इस बार उन्होंने जो कहा उसने हमें और डरा दिया। रघुवीर जी ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। ये उनकी और ऑफिस स्टाफ या सीनियर मैनेजमेंट के साथ की गई कुछ बातचीत थी। मैंने रघुवीर जी से पूछा, क्या ये बातें आपने फोन पर की थी? रघुवीर जी ने कहा,
नहीं अमित जी, ये बातें तो पर्सनल मीटिंग्स में हुई हैं और बहुत सेंसिटिव हैं।
मैंने रघुवीर जी से पूछा, जब आपने ये मीटिंग्स की आपकी लोकेशन क्या थी? उन्होंने कहा,
5 रिकॉर्डिंग्स हैं, 2 बार मैं चैम्बर में ही था और 3 बार मीटिंग रूम में।
मतलब कोई है जो आपके ऑफिस में ही है। मैंने पूछा, क्या ये बातें आपके साथ जिसने मीटिंग की वो भी रिकॉर्ड कर सकता है, रघुवीर जी ने कहा।
अलग अलग मीटिंग में अलग अलग लोगों से बातचीत की रिकॉर्डिंग है अमित जी, कोई कॉमन व्यक्ति तो इसमें है नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि सामने वाले ने रिकॉर्ड की होगी।
कोई तो था जो कॉमन था, व्यक्ति या फिर कोई डिवाइस। क्रिमिनल लगातार रघुवीर जी को मॉनिटर कर रहा था और पैसे मांग रहा था। यह एक बात कॉमन थी कि पैसे उसी बिटकॉइन वॉलेट में मांगे जा रहे थे जो बिटकॉइन वॉलेट उसने हमें रैंसमवेयर अटैक के टाइम दिया था। मतलब ये जो भी था उसी ने पहले फेक रैंसमवेयर अटैक क्रिएट किया और अब जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने यूं सर्वेलेंस करना शुरू कर दिया। रघुवीर जी के उस ऑफिस में करीब 200 लोग थे और किस पर शक करें और किस पर नहीं, फिर भी हमने उनसे डिस्कशन करके एक सस्पेक्टेड लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की। लोग जो कि उनके आसपास रहते हैं या उनके फ्लोर पर आते जाते हैं। क्रिमिनल ओवर कॉन्फिडेंट था और उसने एक गलती तो की थी। एक एनोनिमस रैंसमवेयर अटैक के पीछे छिपने वाले ने अब ये तो जाहिर कर ही दिया था कि वो इसी ऑफिस में है और ये ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसको पहचानना बहुत जरूरी था। मैंने फिर से अपनी टीम से विशाल को भेजा और एक बार फिर उनके ऑफिस में बग ट्रेसिंग की गई, पर कुछ भी नहीं मिला। तो क्रिमिनल उनकी बातें सुन कैसे लेता था। हमने सारे सस्पेक्टेड लोगों पर ओसिंट भी किया और उनकी साइकोलॉजी और एस्पिरेशन समझने की कोशिश की, पर बहुत एनालिसिस के बाद भी हम कुछ जीरो डाउन नहीं कर पाए। हाँ, इस एनालिसिस से हमने सस्पेक्टेड लिस्ट को थोड़ा छोटा जरूर कर लिया। इसी लिस्ट को डिस्कस करने के लिए मैं रघुवीर जी के ऑफिस पहुंचा। मैं रघुवीर जी के साथ बैठ के उन सभी लोगों के बारे में बातचीत कर ही रहा था जिन पर हम शक कर सकते थे। उनके ऑफिस में हर एक के एंट्री एग्जिट की टाइम निकलवाई गई। इन टाइमिंग को रिकॉर्डेड वॉइस टाइमिंग के साथ मैप किया गया कि ये लोग उस वक्त उस फ्लोर पर थे जब आवाजें रिकॉर्ड हुई। इस एक्सरसाइज के बाद हमने कुछ और नाम जीरो डाउन किए, पर कंक्लूजन कुछ भी नहीं था। मैं रघुवीर जी के साथ डिस्कस करके बाहर आया और मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठा ही था कि मुझे रघुवीर जी का कॉल आ गया और उन्होंने कहा,
अमित जी मेल आई है, मेल में वो सारे सस्पेक्ट के नाम है जो हमने अभी मीटिंग में डिस्कस किए।
मैं चौंक गया था क्योंकि मीटिंग में हम दो ही लोग थे। मैं भाग के उनके ऑफिस गया। हम दोनों ने पूरा मीटिंग रूम स्कैन किया पर कुछ भी नहीं था। मुझे लगा अगर कुछ हो रहा है तो रघुवीर जी के फोन के थ्रू ही हो रहा होगा। मैंने उनका फोन भी चेक किया पर उसमें कोई मेलवेयर या सस्पेक्टेड ऐप भी नहीं थी। अब हम मीटिंग रूम की बजाय उनके चैम्बर में आके बैठ गए। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि रघुवीर जी के फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। मैंने कहा, आपको शायद कोई कॉल आ रहा है। उन्होंने चेक किया तो कॉल या मैसेज नहीं था। मैंने रघुवीर जी से उनका फोन मांगा और चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। रघुवीर जी के फोन में एयरपॉड्स कनेक्टेड थे। मैंने उन्हें एक कागज पर कुछ लिख के दिया और वो समझ गए। मैंने कहा कि आपका केबिन और मीटिंग रूम्स तो बग्ड है। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो आपको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखनी है, हम कहीं और जाके बातचीत कर सकते हैं, रघुवीर जी ने कहा।
हाँ, ऊपर एक स्टोर रूम भी है, वहां कोई नहीं जाता, वहां चल के बात कर लेते हैं।
हम लोग टॉप फ्लोर के स्टोर रूम में गए, वहां बातें की और लौट आए। नीचे आकर तुरंत रघुवीर जी ने सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को ऑन किया और जो उन्हें दिखा उसे देख के वो गुस्से से लाल हो उठे। हम लोग जब लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर गए, उनकी आईटी टीम का एक मेंबर अजीत भी सीढ़ियों से ऊपर गया था। अजीत ने रघुवीर जी के फोन में अपने एयरपॉड कनेक्ट कर एक शॉर्टकट सेट कर दिया था कि जब भी उसकी एयरपॉड कनेक्ट होते सर्वेलेंस ऐप लॉन्च हो जाती और उसे आसपास की आवाजें सुनाई देने लगती। अजीत पकड़ा गया और उसने फेक रैंसमवेयर अटैक करना भी स्वीकार कर लिया। दरअसल आईफोन का एक फीचर है कि अगर आपके फोन से एयरपॉड कनेक्टेड हैं तो आप फोन के आसपास हो रही बातचीत दूर से सुन सकते हैं और आप अपने स्मार्ट वॉच से फोन से फोटोज भी खींच सकते हैं जबकि आप फोन के आसपास हैं ही नहीं। कई बार लोग अपना फोन आपके आसपास छोड़ के चले जाएंगे और फिर आपकी बातचीत सुन सकते हैं। ये फीचर एंड्रॉयड फोन में भी ट्रिगर किया जा सकता है। इस तरह के रैंसमवेयर और स्नूपिंग क्राइम से सेफ कैसे रहना है मैं आपको अभी बता देता हूं। अपने सर्वर को रैंसमवेयर जैसे अटैक से बचाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। समय समय पर अपने एडमिन यूजर्स को एक्सेस लॉक के थ्रू चेक करते रहें कि कहीं कोई नया यूजर ऐड तो नहीं हुआ, एडमिन अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास तो नहीं चला गया, और WP एडमिन से बोगस अकाउंट को रिमूव करते रहें। अपने एडमिनिस्ट्रेटर पेज को सिक्योर रखें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर दें। फाइल के एडिट फंक्शन की डिफॉल्ट सेटिंग्स को डिसअलाउ रखें। अपने सिस्टम के डेटाबेस, FTP, कंट्रोल पैनल सभी के पासवर्ड अलग अलग रखें। फायरवॉल का इस्तेमाल करें और अपनी वेबसाइट को एक फायरवॉल के पीछे होस्ट करें। अपने सर्वर के कंटेंट और वेबसाइट का हमेशा रेगुलर रिलायबल बैकअप लेते रहें, ताकि अगर डेटा इनक्रिप्ट हो भी जाए तो आप तुरंत बैकअप से पूरा सिस्टम रीस्टोर कर सकें। आज का साइबर सवाल बहुत जरूरी है, जरा सुनिए।
हेलो, मैं सुमेधा हूँ एंड आई हैव एन 11-year-old किड। अमित जी, वो गेम्स बहुत खेलता है और मुझे डर लगता है क्योंकि आजकल गेम्स के थ्रू बच्चों के साथ साइबर क्राइम होना या फिर साइबर बुलिंग होना बहुत कॉमन है। तो मैं क्या करूँ, क्या उसका गेम खेलना बंद करवा दूँ?
सुमेधा जी, साइबर क्राइम का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को लेकर ही होता है, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल होते हैं और ये जितने भी गेम्स आजकल बच्चे खेलते हैं ये सारे मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं और इसके अंदर चैट फैसिलिटी भी होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक 30-40% गेम खेलने वाले क्रिमिनल्स होते हैं या बॉट्स होते हैं, और ये आपका या तो डेटा चुरा रहे होते हैं या आपके फ़ोन में घुसकर पैसे भी निकाल सकते हैं। बच्चों को लगता है कि उनके साथ जो खेल रहा है वो उन्हीं की एज ग्रुप का कोई व्यक्ति होगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे को ऐसी परमिशन ना दे कि बिना आपके इंटरवेंशन के वो कोई भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सके, जैसे कि फ़ोन का ऑथेंटिकेशन ज़रूरी हो। इसके लिए आप ऐप इंस्टॉलेशन में ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दीजिए, ताकि बिना पासवर्ड दिए प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो ही ना। हाँ, कई बार इन गेम्स के थ्रू डायरेक्ट लिंक भी भेज देते हैं क्रिमिनल्स और उसके थ्रू भी बच्चे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इसके लिए आपके फ़ोन में स्कैनर्स होने चाहिए। जैसे मोबी आर्मर करके एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लें, ये आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप है सबको स्कैन करके आपको बता देगा, अलर्ट दे देगा कि ये खतरनाक ऐप है, इनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए तुरंत, या ये ऐप इस तरह का डेटा चुराने वाली हैं और इनसे क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की स्कैनर ऐप से आपको आइडिया लग जाएगा कि कोई गेम मेलिशियस है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये ऐप आपके बच्चे के लिए खतरनाक ऐप्स के लिए भी वार्निंग दे देता है, तो आप मोबी आर्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सुमेधा जी कि मेरे जवाब से आपके बच्चे को लेकर जो आपकी टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आप उसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। सुमेधा जी की तरह आप भी अपना साइबर सवाल Red FM इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पर या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट साइबर दुबे पर भी पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक और रियल लाइफ साइबर क्राइम केस के साथ ऑन Red FM हिडन फाइल्स। तब तक के लिए रहिए साइबर सुरक्षित